ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने और बयान रिकॉर्ड करने की सीबीआई को अनुमति दी। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी को भाजपा पर उनके बयान पर नोटिस जारी किया। आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने और उनके बयान को रिकॉर्ड करने की सीबीआई को अनुमति दे दी है। सीबीआई ने उनसे पूछताछ के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। उन्हें 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ वकीलों की बैठकों की संख्या बढ़ाने संबंधी याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। श्री केजरीवाल ने ऐसी बैठकों की संख्या सप्ताह में 2 से बढ़ाकर 5 बार करने की मांग की थी। न्यायालय ने सोमवार को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में श्री केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत जेल में डाला गया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बताया कि सांसद मगुंथा रेड्डी को केजरीवाल के खिलाफ गलत बयान देने के लिए कहा गया था।
ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया जो बात सच थी। उसने कहा हाँ मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है, राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है, वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है।
भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाले में लगातार भ्रामक बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को जमानत मिल जाने से मुकदमा खत्म नहीं हुआ है।
संजय सिंह एक बात का जवाब दें, मत करो जरूरत की बात। शराब नीति जब बदली जा रही थी रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ रात को 1 से 3 के बीच में मीटिंग की थी कि नहीं, बताएं संजय सिंह। दिल्ली के जनता के टैक्स से पैसा बचा के लूट कर अपना राजमहल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए तो अपना महल खोलते नहीं है, लेकिन संजय सिंह को उस महल में जाने की इतनी तीव्रता है कि तिहाड़ से सीधा पहले उस महल में जाओ कि मेरा नंबर कब आएगा।
निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को नोटिस जारी किया है। आतिशी ने कहा था कि राजनीतिक करियर बचाने के लिए उन्हें भाजपा में शामिल होने की पेशकश की गई थी। उन्हें सोमवार तक जवाब देने को कहा गया है। आयोग ने कहा कि नेताओं के सार्वजनिक मंच पर दिए गए बयानों पर मतदाता विश्वास करते हैं और उनके बयानों का प्रचार पर असर पड़ता है। भाजपा ने इस बयान पर शिकायत दर्ज कराई थी। इस नोटिस पर आतिशी ने आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग विपक्षी दलों की शिकायत का संज्ञान अक्सर नहीं लेता है, लेकिन सत्ताधारी भाजपा की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करता है। उधर भाजपा ने इन आरोपों को आपत्तिजनक बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी का बयान राजनीतिक और प्रशासनिक शिष्टाचार की सीमाओं का उल्लंघन करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चयनित जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्र के अनुसार कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्य नीतियां बनाने को कहा है। श्री कुमार ने आज नई दिल्ली में 11 राज्यों के निगमायुक्त और चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। इन जिलों में पिछले चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी कम रही थी। बैठक का उद्देश्य लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाना है। एक रिपोर्ट।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को इस प्रकार काम करने का निर्देश दिया है जिससे मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी से गौरवान्वित महसूस करें। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कम मतदान वाले 215 ग्रामीण और 51 शहरी संसदीय क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, ठाणे, नागपुर, पटना साहिब, लखनऊ और कानपुर के निगम आयुक्त तथा बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ चयनित जिलों के चुनाव अधिकारी विचार विमर्श में शामिल हुए। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने बैठक में वर्चुअली भाग लिया। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अभिषेक कपिल।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में जांच कल होगी। इस चरण में बाहरी मणिपुर क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले कल इस चरण के लिए नामांकन भरने का कार्य संपन्न हो गया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह घोषणा पत्र मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के घोषणा पत्रों के किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जल प्रबंधन के एक पृष्ठ पर अमरीका के न्यूयॉर्क की बफेलो नदी की तस्वीर लगाई है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि घोषणा पत्र को न्याय पत्र बताने वाली कांग्रेस ने अब देश के साथ अन्याय किया है। राजधानी में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां प्रचार कर रही हैं। आज भाजपा ने अपने 7 प्रत्याशियों के साथ संगठनात्मक बैठक की। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली से पार्टी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने महिला मोर्चा की बैठक को संबोधित किया। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से पार्टी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया पार्टी के उत्तर पश्चिम जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। वहीं पूर्वोत्तर दिल्ली से प्रत्याशी मनोज तिवारी ने चुनाव आयोग द्वारा आतिशी को दिए गए नोटिस और कथित आबकारी घोटाले पर मीडिया से बातचीत की। चांदनी चौक से प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल शक्तिनगर और जैन कॉलोनी में बैठकों में शामिल हुए। पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी कमलजीत सहरावत मायापुरी, जनकपुरी, रघुवीर नगर और फतेहनगर में अनेक बैठकों में शामिल हुई। दक्षिण भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह विधूड़ी ईस्ट ऑफ कैलाश, द्वारका, बिजवासन, कापसहेड़ा, पालम और महिपालपुर में परिचय बैठक में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली से प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने आज केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी सत्तारूढ़ भाजपा के नियंत्रण में आ गई है। पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी कुलदीप कुमार जंगपुरा में एक बैठक में शामिल हुए। वहीं पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी महाबल मिश्रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध आज उत्तम नगर में मशाल मार्च में शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज राजधानी के शालीमार बाग स्थित शीश महल स्मारक का दौरा किया। उन्होंने मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा भी की। उपराज्यपाल के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मरम्मत कार्य के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी में सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को आज एक पत्र लिखा। उपराज्यपाल ने पत्र में स्वास्थ्य मंत्री को याद दिलाया कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए उनसे आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने इससे बचने के लिए बहाना बनाया। श्री सक्सेना ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री कमियों को छिपाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों पर दोषारोपण करते हैं। भाजपा ने भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ लगाए जाने पर आपत्ति जताई है। पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कथित आबकारी घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल की फोटो इन दोनों महानायकों के साथ लगाना बेहद शर्मनाक है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि महापुरुषों के साथ तस्वीर लगाना बेहद आम बात है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों में टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता लाने का निर्देश दिया है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सराहनीय काम कर रहा है और लोगों को इस बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थाओं को इसका व्यापक प्रचार करने को कहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परीक्षा आकलन और मूल्यांकन विधियों में परिवर्तन किया है। इस नई पहल में सक्षमता आधारित प्रश्न अधिक होंगे जबकि अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न कम संख्या में होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार सातवीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। श्री दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद दर 7% और मुद्रास्फीति की दर 4.5% रहने की संभावना है। रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई के माध्यम से नकद राशि जमा कराने की सुविधा प्रदान करेगा। फिलहाल यूपीआई का उपयोग धन के लेन देन के लिए किया जाता है। एक रिपोर्ट।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस सुविधा से उपभोक्ताओं को नकदी जमा कराने में आसानी होगी, जिससे बैंकों की नकदी लेन देन प्रक्रिया और सक्षम होगी। आरबीआई ने प्रीपेड भुगतान माध्यम पीपीआई वॉलेट से यूपीआई भुगतान के लिए थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया है। इससे उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ेगी और छोटे लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। लुधियाना में आई लीग फुटबॉल में आज दिल्ली एफसी ने एक तरफा मुकाबले में राजस्थान एफसी को 6-3 से हरा दिया। अंक तालिका में मोहम्मदन स्पोर्टिंग पहले नंबर पर है। कल उसको शिलांग लजोंग एफसी के खिलाफ मैच खेलना है। इसमें सिर्फ ड्रॉ से ही वह आई लीग चैंपियन बन जाएगी और उसे इंडियन सुपर लीग में जगह मिलेगी। राजधानी में आज वायु गुणवत्ता में बदलाव देखने को नहीं मिला। आज का वायु गुणवत्ता स्तर मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 173 था। राजधानी में आज मौसम साफ रहा और दिन के समय तेज धूप खिली रहने से दिन का तापमान भी सामान्य से अधिक रहा। हालांकि शाम के समय कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहे। आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिली रहेगी और आसमान साफ रहने की संभावना है। दिन के समय तेज हवा चलने की भी आशंका है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज और कल लू चलने का अनुमान जताया है। उधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंगलवार तक आंधी और बारिश की आशंका है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अगले 7 दिन बिजली, आंधी और बारिश के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में देश में तापमान बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने और बयान रिकॉर्ड करने की सीबीआई को अनुमति दी। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी को भाजपा पर उनके बयान पर नोटिस जारी किया। आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।